वृंदावन आकर सारे ब्रजवासी से मिले और गंगा महाराज यशोदा मैया गोपी लोग सखा लोग मिले मिले पर दो महीने तक इधर होते थे और दो महीने तक राम जी गोपी के तक आते रहते ये भागवत में हमने और मधु माधव दो महीना राजिया किए और भगवान श्री कृष्ण जो गोपी है वो आदर तो अभी भी अगर जानते हैं तो राम घाट है। राम घाट में क्या लाल जी है पिचा पिचा मैंने इसलिए यमुना जी को इसलिए ब्रजभाषा में क्या बोलते हैं पिचा था। तो आज जो निशान है जो यमुना जी को बुलाए आए नहीं थी तो बलराम जी वहाँ से इसलिए अभी भी यमुना जी में तेरा है तो वो राम घाट जो प्रसिद्ध है हम लोग गाते हैं जो जय राधे जय कृष्ण इसलिए जय राम घाट जय भूमि नंदन। तो बलराम जी इस राम घाट के क्षेत्र में दो महीने तक राज किया ये थे बारहवीं बीते थे हम लोग आज जब हम देखे हैं बलराम जी को क्या हो गया था हानि हानि को लगे थे और सुख तो बारहवीं पिए थे बारहवीं पिए पीकर भोर उत्पन्न होकर रामलीला किए थे दो महीने इसलिए ये जो पूर्णिमा है ये पूर्णिमा में बलराम जी की राश राश पूर्णिमा है और इसमें वंशीवरण ठाकुर श्यामानंद प्रभु की आविर्भाव तिथि है और हनुमान जी की हनुमान जी जो है महान भक्त है रामचंद्र जी राष्ट्र आचार्य है श्रेष्ठ है उन्हें अशोक कैसे एक किंकर कैसे होना चाहिए कितना कठिन से कठिन कार्य करते थे भगवान प्रभु सेवा के लिए तो इससे हमें प्रभु की सेवा के कैसे समर्पित होना चाहिए कैसे आग्रही होना चाहिए कोई भी कितना से कितना कठिन कार्यों को उस कार्यों को करके हनुमान जी सबके पास सिद्ध किया कि गुरु की सेवा के लिए अपने समस्त बल की शक्ति समर्पण सबको समर्पण करके रामचंद्र की सहायता के सेवा किया। इसलिए अपने साथ लोग देखेंगे किंकर शब्द ऐसे है क्या करूं इससे किंकर शब्द है आप देखें राम दरबार के पास हमेशा हनुमान जी खड़े रहते हैं तो फिर क्या कब जरूरत पड़े दिन रात जो भी घंटा हमेशा विश्राम नहीं लोग तो विश्राम का अवसर नहीं है फिर आप उसे जरूरत है हनुमान जी हमारे ऐसे किंकर है जो हमेशा सेवा करने के लिए तैयार है इससे किंकर किंकर जो है काश को जाते हैं इसलिए सेवक जो है हनुमान के जैसे कोई नहीं हो सकता है। तो हमें इष्ट के प्रति वैष्णव के प्रति हमें कैसे सेवा हम कर सकते हैं हम हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हैं किंचित मात्रा में हमारा भी ऐसे निष्ठा आगे आ जाए प्रभु सेवा के लिए। तो हम देखते हैं हर महान महान आचार्य लोग माधव चतुर्पुरी के बारे में बताते हैं कि भूखे रहे तो वो उनको मांगी आना खाए बिना जहां चंद्र ने बाहर बोली रही है परम विरक्ति मणि सर्वत्र दासी ग्राम वार्ता वाय द्वितीय संदर्भी तो ऐसे आदर्श आचार्य लोग जो आपके लिए भूखा रहते हैं फिर भी मांग कभी नहीं खाते तो उन्होंने जाकर चंदन सहस्त्र वर्ष दूर वृंदावन से जाकर चंदन तो प्रभु की कार्यों के लिए गुरु की सेवा के लिए जो अपने लिए नहीं कर रहे हैं ऐसे कार्य भक्त लोग गुरु सेवा के लिए इस आदर्शों को आदर्श शिक्षा देने के लिए आचार्य हनुमान जी है तक उदाहरण है आप जानते हैं रामायण में भारी बड़ी प्रशंसा है और बड़ी कठिन से कठिन कार्यों को किया जो उसके द्वारा संभव नहीं है ऐसे हनुमान किया इसलिए हमें ये शिक्षा है कि प्रभु की सेवा, हम लोग अपने सेवा में बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन प्रभु की सेवा जब आ गया तो केला देते ऐसे नहीं, अपने सेवा से करोड़ करोड़ गुना ज्यादा आग्रह लेके ध्यान देके प्रभु की सेवा करना चाहिए। ये हनुमान जी से हमें शिक्षा में उनका जन्म हुआ है और उनके नाम बचपन से दुखी भी छोड़ा दुखी था, तो बचपन में बच्चे होकर उनके कोई बड़े भाई या मर गए तो आते में ये दुखी दुखी कृष्णदास की जन्म हुई, तो माँ बाप उनके कृष्ण मंडल पिताजी के नाम है तो और माता तुलिका है, तो मर जाएगा तो उनके मर जाते हैं, इसलिए उनका नाम ऐसे खराब नाम लगते हैं, जैसे महाप्रभु के नाम उनके कोई दोष न लग जाए, केवल कोई पिछाशी डाकनी झटनी सब ना पड़ जाए, इसलिए उनके नाम क्या रख दिया, तो वो है नाम रखते क्या हिमाय, इस तरह का नाम दुखी कृष्णदास। लेकिन बचपन से संसार के कोई भी कार्य उनका मन नहीं लगता था, देवकी थे और पास में जो मंदिर था उसमें जाके चैतन्य महाप्रभु जी का उनको भी कथा सुनते थे और उनके मन नवद्वीप की ओर जाने के लिए व्याकुल होता था। अरे इस प्रश्न में हृदय चैतन्य नाम भी सुना है कि जिसके हृदय में चैतन्य प्रवेश किया उससे सुंदर नाम हृदय चैतन्य हुआ, तो इस नाम से इनकी अलौकिक कार्यों से शरणंद दुखी कृष्णदास बड़े आकर्षित हुए और उस भक्त लोग जा रहे थे उनके साथ उन्हें कालना में जाकर पहुंचा, उधर जाके रात हो गया था, राष्ट्रमंडल में सोए हुए थे, तो हृदय चैतन्य जब ठाकुर जी सेवा के लिए आए रात को उसमें देखे कि एक लड़का सोया हुआ है, तो उसके बाद उन्होंने उठा और तुरंत सेवा करने लगे राष्ट्रमंडल की छावे तो इसके बाद देखा बहुत अच्छे सेवा करते हैं और सेवा करके जो भी थोड़ा प्रसाद पाते हैं कोई भी वो पर कालना के देखे होंगे कालना के जो गोविंदास के जो सिपाठ है जो गौरवीताएँ चैतन्य महाप्रभु के समय की गौरवीताएँ हैं और जो वो महाप्रभु गौरवीताएँ जो थे कोई गौरवीता साक्षात है अभिन्न है वो गौरवीताएँ किसी भी हुआ है कालना में, तो गौरीदास पंडित के शिष्य हृदय चैतन्य प्रभु उनके हृदय में महाप्रभु एक बार प्रवेश किए थे, इसलिए इनका नाम हृदय चैतन्य और उधर जाके श्रवण प्रभु रहते थे, इनकी सेवा भाव को देख दर्शन करके हृदय चैतन्य के हृदय में दया आ गया, उनको पूछने लगे और धीरे धीरे उन्होंने आश्रय लिए, तो एक फूल की बागों में उनको जल आदि देने के लिए गंगा से जल लाकर देने के लिए बताए थे, गंगा दूर है और पानी लाते ऐसे निष्ठा करके सेवा करते थे, कंठ में पानी लाते लाते उनके कंठ में भाप हो गया, वहां से तीरा पर गए फिर भी पानी लाना बंद नहीं हुई, तो ऐसे हनुमान है वैसे सेवा प्रभु सेवा के लिए प्रभु की आज्ञा है यही जीवन की लक्ष्य है आचार्य लोगों के, तब उनको बहुत बहुत प्रसन्न हुए, उनकी सेवा का दर्शन करके उनको आलिंगन किए, उनके उनके दवाई पानी सब कर दिए और तो उनके पर मन हुआ कि वृंदावन आने का इच्छा हो कि मैं वृंदावन जाऊँगा और प्रसन्न अच्छा से अध्ययन करूँगा, ऐसे मन हुआ गुरु से पूछा कोई अगर पूछने के बाद उन्हें आज्ञा दी आने के लिए, तो उन्होंने आकर जीव गोस्वामी से मिले और दो व्यक्ति थे तीन मित्र थे, एक तो निवास आचार्य और एक भगवान ठाकुर और श्यामानंद तीन मित्र थे, इस तीन मित्र जीव गोस्वामी पास अध्ययन किए और तीनों अलग अलग गुरु के शिष्य हैं, नरोत्तम दास ठाकुर गोपाल दर्शन के शिष्य हैं और श्रीमाचार्य गोपाल गोस्वामी और श्रवण गुरु तो अलग अलग सेवा में तीनों को देखो हमने नियुक्त किया, धर्म किए और सेवा भी करते अलग अलग सेवा में नियुक्त किए। तो हम लोग देखते हैं गुरुकुल के बारे में भी, हम सब देखते हैं पहले गुरुकुल है बच्चे फीस तो नहीं करते लेकिन सेवा असल बचपन से छोटे छोटे बच्चे को जैसे उसका भिक्षा मांगना है, जो सेवा करना है, खेती में काम करना है, ऐसे ऐसे उसका कुछ सेवा में नियुक्त करते हैं। पैसा लाखों लाखों का नहीं करते, सरल जीवन यापन करते थे और मरना पड़ता था भिक्षा मांगना पड़ता। ऐसे कि रामचंद्र भगवान कृष्ण भगवान सबको ऐसे करना। तो इसी प्रकार उन्होंने जीव को सरकार अलग अलग सेवा में नियुक्त किया। तो श्रवण गुरु की सेवा दिया है कुंज में झाड़ू लगाने के लिए। हम लोग अपने को बहुत बड़े से भक्त समझते हैं, हम लोग इसी प्रकार सेवा से हम लोगों को दिया जाएगा हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन श्रवण गुरु जैसे मोहन राजनी की भरचरी मंजरी मनक मंजरी जीवन सेवा ये राम से सेवा की महिमा। कोई भी सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, ठाकुर जी की सेवा भावना के साथ सेवा करना। उन्होंने सेवा करते 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 कोई साल तक प्रेम से सेवा करते, बहुत धन से रोते थे और सेवा करते थे। सेवा करते करते राज रानी की भी प्रसन्न हो गई और उन्हें दर्शन देने का इच्छा हो गया। और उनके पायल के पूरे एक पायल जो है तो एक बार गिर गए नारायण के राजकुंड में। हमेशा हर दिन नित्य लीला
प्रेम से सेवा करना है।
से सेवा करने से कभी भी सब कुछ खुला रखे, ये चिंता नहीं था हम ये दर्शन हो सकते हैं कृपा। इसलिए कोई भी सेवा जिसको जो सेवा मिला है धर्म से अपना समझ के करना है। भगवान बहुत 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 आगे के बाद ऐसे वृंदावन धाम में कोई सेवा कोई भी धर्म लगाने का हो कोई भी सेवा हो।
तो इसी प्रकार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम
हरे हरे। इसी प्रकार से समस्त लोग कृपा हो गए गरीब तो इसके बाद बहुत सारे कुछ हो गया। अब तो जानते हैं तिलक चेंज किया तो उसका हृदय चैतन्य भर गया और हृदय चैतन्य जो है 64 महंती को लेकर आगे बड़े मीटिंग बैठाए। मीटिंग बैठाने के बाद पूछा और नाम भी चेंज हो गया उनका, जो कृष्णदास का नाम शरण तो हो गया। तो ऐसे जो प्रमाणिक वैष्णव लोग हैं ऐसे नहीं कर सकते कि किसी का शिष्य उसको दूसरा की दीक्षा देने का अधिकार नहीं है। इसलिए 64 महंत को लेकर आ गए, बैठे बैठे जिनको संस्कृत में मैंने कुछ दिया तब श्रवण से पूछा गया तो श्रवण उन्होंने ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के बाद मतलब मैं पूरा समय टाइम लेता हूँ 10-20 मिनट के बाद ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के बाद तो राधारणी जाकर गोरीदास पंडित सुवर शाखा है, सुवर शाखा से बोला हे सुवर देखो तुम्हारा शिष्य हृदय चैतन्य ने ये मेरे सहचरी है श्यामानंद जी को परेशान कर रहे हैं तो आप उनको समाधान करो। तब सुवर गोरीदास पंडित ठीक है और सुबह शाखा जो है वो राधारानी की वेश ले लेते हैं और राधारानी सुबह शाखा की वेश ले लेते हैं तो सुबह शाखा ऐसे है कि कृष्ण लीला में भी कृष्ण लीला के जो उनका माधुर्य लीला है इनमें उनका प्रवेश है उनकी जानकारी सब कुछ है। इसलिए सुबह शाखा हर कोई शाखा नहीं जानते हैं, कुछ कुछ शाखा है कृष्ण की जो कृष्ण से बड़े हैं उनके साथ ऐसा बात को नहीं करते हैं। अगर कुछ है जो कृष्ण का आयु से छोटा है इसके साथ किस प्रकार बात नहीं करते, जो बिल्कुल समवयस्क है ये लोग बताते हैं, ये लोग खबर अबर देते हैं राधा रानी के बारे में। दूसरा सती के पास से आराम मिलना है कैसे क्या करना है राधा रानी के क्या हाल है कृष्ण के क्या तब ये सब कृष्ण के कान से बच्चे उस लड़के लोग बोलते हैं जो कृष्ण के बड़े समय आयु में है। ये तीन प्रकार की शाखा है, एक एकदम समायु की है एक छोटा है। तो सुवर सुवर शाखा सब कुछ जानते हैं इसलिए राजभाई बताने के बाद सुवर गए और बताया ठीक है। तब बताया कि उन्होंने हृदय चैतन्य कुछ समय बाद जब उन्होंने आपके राजभाई बताया कोई बात नहीं आप बता देना कि बस आपने ही इस नाम दिया तिलक दिया। तब श्रवणानंद पूर्वा के बताया कि आपने जो ऐसे दिया है मेरा नाम और ये तिलक दिया। तब तिलक को मिटाने अगर ठीक है ऐसे मैंने दिया हाँ तुम्हारा तिलक सबसे सबसे तिलक है तो हम इसको मिटा देते हैं, मिटने से मिट जाए तो आप होगा और नहीं मिटेगा तो जानेंगे आप फंस गए। तिलक रचना किया तिलक बना के तिलक बना के मिटा दे गए, जितना भी मिटा दे मिटाने चाहिए इतना मिटा दे और भी उज्जवल होते गया। तो समझ गया ये बात सच है। और सुवल ने आके सुवल गोरीदास पंडित श्रवणानंद के हृदय चंद्र के रूप में आकर उनको मंत्र दिए इसी प्रकार प्रमाणित हो गया। तो इस 64 महंत तो जब वृंदावन आए तो लोग चाहते थे वृंदावन परिक्रमा के लिए श्रवण मंत्र प्रभु आदि हृदय चैतन्य आदि शब्द परिक्रमा के लिए निकाल पड़े। एक राक्षसपुरी में गया तो श्रवणंद प्रभु की गोपी भाव में आ गए और उन्हें शीर में कपड़े देके ऐसे ऐसे नित्य नित्य की भूमिमा करने लगे तो हृदय चैतन्य बहुत गुस्सा हो गए। बोले हमारा कृष्ण के भाव है ये लोग शाक्त भाव में है। हृदय चैतन्य सुबल शटा की गोविंदा परंपरा है ये शाक्त भाव में है कृष्ण के भगवान के साथ मित्रता के भाव में है। बोले हमारे कृष्ण में भाव से तो छोड़ कर राजा के भाव में क्यों गया नाराज हो गया तो उसको श्रवणंद के भाव आ गया। उस राष्ट्र को उधर उधर सारे भक्त लोग चले गए लेकिन श्रवणंद प्रभु उधर रहे और तो उसमें बात जब उन्होंने अपने जहाँ पे कैंप था वहाँ पे परिक्रमा कर रहे थे ब्रजमंडल की तब में आए आते रहे रात को सुबह सुबह जब हृदय चैतन्य को प्रणाम करने के लिए गया तो प्रणाम किए तो बातचीत होते रहा बोला कि हमारा कृष्ण के भाव है हमारा गुरु परंपरा के ही नियम है आप सबके भाव छोड़ दो श्रवण को बोला मैं नहीं छोड़ सकता। तब एक डंडा उठाया मारा शरीर में मारा उन्हें शरीर में मारे काट गए पूरा खून बहने लगे तो फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बताए कभी क्षमा याचना किया और चुपचाप रहे। रात को सोया हृदय चैतन्य प्रभु स्वप्न देख रहा चैतन्य महाप्रभु सपने में आए एकदम सफेद से उतारे लगा हुआ थे वस्त्र महाप्रभु की उसके पूरा खून से छना हुआ था महाप्रभु के शरीर काटा हुआ है और उस रक्त सूख गया उसके सिर की और कपड़े ये लग गया ऐसे स्वप्न देखा बोला प्रभु ने ऐसे आपकी कैसे दशा हो गई आपकी। बोला तू पूछता है तू तो किया है श्यामानंद और मेरा शरीर एक ही शरीर रहता है तू उसकी शरीर में डंडे से प्रहार किया है वो प्रहार मेरे शरणागत भक्त है तो उसको प्रहार मेरे शरीर में लगा है। वो रोने लगे हृदय चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल में क्योंकि वो उनको सेवा करते थे बहुत जोरदार पंडित लोग उनके प्रेमी है उनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु आए थे इसलिए वो बहुत रोने लगे बहुत रोने लगे महाप्रभु के चरण कमल में वो क्या हुआ मैं ऐसे अपराध कर लिया श्रवण इतना महान है मुझे पता नहीं था आप कृपा कीजिए इस अपराध से मैं कैसे बचूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु उनकी पत्नी की कृपा है उन्होंने बताया कि ठीक है आप द्वादश महोत्सव करो 12 महोत्सव भोजन देना है विष्णु तभी आपका इस अपराध से आप इसके बाद उन्होंने शब्द देने के बाद बताया जितना महत्व में उस शब्द बताया श्यामानंद को सब लोग बहुत प्रशंसा किए श्यामानंद प्रभु के पास हृदय चैतन्य आलिंगन किए बोला मेरा गलती हो गया अगर कोई नहीं कोई नहीं प्रभु आपने तो मुझे शासन किया है ऐसे अपना समझते हैं मुझे तो ऐसे है शिष्यों को इतना ऊंचा शिष्य है इतना ऊंचे स्थिति में है श्रवण को मारा फिर भी दुष्ट होने के बाद तो दूर के बाद अनुकूल भाव में तो इसके बाद बताया कि ऐसे ऐसे गुरु महापुरुष की आज्ञा है कि मेरा गलती हो गया इससे माफ के लिए मुझे द्वादश महोत्सव करना है। श्रवणानंद प्रभु ने बताया प्रभु मुझ पर आपकी कृपा है तो इस द्वादश महोत्सव के आठ में मुझे दे दीजिए मैं ही भीख मांग के गणेश को प्रदान करूंगा गणेश को कार्यक्षम करके मैं इस महोत्सव करता हूँ। तब हृदय चैतन्य और दूसरे महंत लोग थे मैं ठीक है तब से इस महोत्सव के जो दायित्व है श्रवणानंद को ले लिए उन्होंने ब्रजमंडल परिक्रमा छोड़ के वृंदावन आ गए वृंदावन में आकर जीव गोस्वामी के चरण कमल में इस बात का निवेदन किया और मथुरा जी जाकर उन्होंने भिक्षा मांगने लगे। उसके बाद उसे जाता है।
इसी प्रकार आज भी इस परंपरा में अभी तक उस द्वादश महोत्सव को मनाया जाता है। विशाल महोत्सव है द्वादश महोत्सव, गोपी वल्लभपुर में अभी भी होते हैं। इनके जो श्रीपाठ है श्री गोविंद देव जी, जगन्नाथ जी मंदिर है, बहुत सुंदर ठाकुर मंदिर है, जो स्वप्न स्वप्न दर्शन करके जो मैं मुझे गोविंद के नाम में प्रकट करो, इस स्थान में मेरा मंदिर बनाओ, इस गोविंद देव अभी भी गोपी वल्लभपुर में है। और तब से श्रवण प्रभु अपने अपने ऊपर इस महोत्सव को लिया। हर साल जब तक श्रवण प्रभु थे ये द्वादश महोत्सव करते थे। आप लोग जानते हैं कि अभी भी जो यमुना में भी द्वादश महोत्सव होते हैं, इस महोत्सव में विशाल उत्सव मनाते थे। वशिष्ठ प्रभु 1,00,000 वैष्णव के चरणों में जो इकट्ठा किया था, अभी भी गोपी वल्लभपुर में वो चरण में तो रखा हुआ है। आप लोग को जो जाएंगे तो मांगेंगे तो आपको देगा। 1,00,000 वैष्णव के चरणों में तो अभी भी रखा हुआ, उसको जल दे देते हैं। तो उस भव्य स्थान है गोपी वल्लभपुर। तो इसके बाद श्रवणानंद प्रभु की कोई साहबेदारी थे रहने की, लेकिन राधा कृष्ण एक बार स्वप्नों में आके बताया, तुम जाओ उड़ीसा में जाकर प्रचार करो, उड़ीसा में जो लोग अशक्त लोग है इनको सबको हरिनाम दो, प्रणाम देकर उद्धार करो। तब उन्होंने जाने का मुझे इच्छा नहीं था, तीनों को संकल्प बता के हम लोग तीनों वृंदावन करेंगे, श्रवणानंद प्रभु नरसिंहदास ठाकुर श्रीनिवास आचार्य, लेकिन जीव गोस्वामी ने तीनों को आपका दिया जाओ तो प्रचार करिए। तो इतने इच्छा हुई थे तो पूरा कवर तो दासों की इच्छा से जो प्रभु की आज्ञा है ये पूरे होते हैं। अपनी इच्छा को तिलांजलि देकर प्रभु की जो आज्ञा है उस आज्ञा को पालन करने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। तो जब ये प्रश्न भेजे तो चले गए, जब उड़ीसा के प्रचार के लिए दायित्व था श्रवणानंद प्रभु की, और बंगाल में इस भागों में पश्चिम भागों में श्रवणानंद श्रीनिवास आचार्य और पूर्व भागों में नरसिंहदास ठाकुर आश्रमा जी इसका प्रचार करने का उनका दायित्व दिया। तो तीनों गए दोस्तों को स्वामी दोस्तों को लेकर गाड़े में गए, जो चोरी हो गया अपने जानते ही हैं। तो इसके बाद श्रवणानंद प्रभु गए एक फल भूमि में, नवीन किशोर एक राजा थे, बड़ा पुष्ट व्यक्ति था, और एक रंकिणी देवी थी। उस मंदिर के पास एक गेस्ट हाउस बनाया था, अतिथि भवन बनाया था। उस भवन में चारों ओर से दरवाजा बंद था, मैंने कोई खिड़कियां कुछ भी नहीं था, अंधेरे कमरे था, और उसमें एक ही दरवाजा था, मंदिर के साथ में था, और उसमें आदमी को बंद कर देते थे और देवी को राजा का बताता है कि बता देते देवी आपके लिए भेंट है आप पाल लो। देवी उसको रात मार के उसको शरीर और उसको खून पी देते, और ऐसे पी पी के राजा का आशीर्वाद करता था। लेकिन ऐसे हुआ श्रवणानंद प्रभु गए, श्रवणानंद प्रभु जब गए आदर के लोग रखा हुआ था, जो भी आते हैं को सत्कार करने के लिए खड़े स्वागत करके ले गया, उसमें उस कमरे में बंद कर दिए, और राजा आके देवी से प्रणाम किया, खाओ तो गए श्रवणानंद प्रभु। अब तो लोग ने थोड़ा उनके साथ में बोला, प्रभु ये कैसे स्थान है, कोई देवी आदि कुछ भी नहीं है, कैसे रहेंगे इसमें। श्रवणानंद प्रभु बोला, देखो ये तो बहुत अच्छा स्थान है वैष्णव के लिए, एकांत तो है स्थान है, इसको भजन करो, नाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। रात हो गया और कब तक बंद कर दिया फोन भी, तो पहले पूछ लिया ताकि इसको बंद कर दे, बस तब तो बंद कर दिया। तो ये लोग और खाने पीने का कोई चक्कर इधर उधर नहीं है। तो रात में 12 बजे देवी की शरीर वो तो पूरा स्वतंत्र समझ गया और बहुत ध्यान से आप लोग चल करते रहो, राधा कृष्ण प्रार्थना करते रहो, उनकी लीला और चिंतन करते रहो, चिंतन करते रहो, ऐसी इच्छा करते रहे अन्यों से ढूंढे देवी की शरीर ऐसे होने लगे, दर्द होने लगे, देवी ने राधा के पास चला गया। राजा के पास जाकर शब्दों में देखा, तू किसको वध किया है, तू किसको वध किया है, इसके लिए तू इसका कुछ मैं सर्वनाश करूं, तो मेरा भी हालत खराब हो जाए, मैं इसको कुछ नहीं करूं, तो महेश्वर है किनको तू वध किया, तुरंत तो जा और वो जो कपड़ा काटने वाला वो देवी से शरण ले गए, बोला तू ऐसे उसको नहीं छोड़ेगा, समान नहीं मांगे तेरे को सब को मैं काट दूंगा। ऐसे देवी होते हैं, अब पूजा किया तो खाया, आशीर्वाद किया, लेकिन कुछ गड़बड़ी हुआ तो उसको ही सहायता करने वाले ऐसे है देवी। तब देवी को शब्द देख उसको दिखा के बाद में शरण के पास आया, तो क्षमा याचना किया है कि प्रभु आप मुझे क्षमा कर दो, ऐसे है मैं, मेरी ऐसी स्वभाव है। तो राजा ने तुरंत राजा रानी थे खाली में पूजा के शवक जैसे क्षमा पूरा सजा के आए और शरण तुम्हें गिरने लगे। जब देखा शरण प्रभु जब ऐसे और सुना दरवाजा खोले, बोले कपड़े लगा दो, मैं इस दुष्ट को मैं दर्शन नहीं करना चाहता, स्वागत करके ऐसे आए करते हैं उसको, मैं बदल उसको मुख में नहीं देखना चाहते कपड़े, उसको सामने कपड़े रख दिया दो सेवक ने। उसके बाद वो गिर गिराते रहे, गिर गिराते रहे, समर्थन प्रभु की कृपा नहीं हुए। उसके बाद जो है ब्रह्म मुहूर्त हो गया, भक्तों को बोला देखो हम यहाँ नहीं रहेंगे, चलो जिसके राज्य छोड़ के चले जाएंगे और उसको मोह दर्शन नहीं करेंगे, पूरे कपड़े रखे और ऐसे ऐसे चले समाज उसका आठ से चले और चले। तो उसमें वो लोग फिर पीछे पीछे चलते रहे, देवी भी चलते रही समाज के साथ, बहुत दूर जाके रुके, फिर देवी भी उनके चरण कमल में गिरे, समाज को रुके और उन राजा को पास में आने नहीं दे रहा था, फिर बहुत गिर गिराते रहे, गिर गिराते, फिर उन्होंने कृपा करने के लिए तैयार हो गया। तो समाज में घूमने के बाद कृपा किए और उनको कृपा किए, महोत्सव की व्यवस्था किए, भोजन आदि की व्यवस्था किए, दूसरे लोग उनको दीक्षा भी दिए और जब बताया अपने द्वादश महोत्सव राजा ने किया, द्वादश महोत्सव जो वो राजा नवीन किशोर ने किया। इसी प्रकार समानंद प्रभु देखिए वैष्णव जो है समस्त शक्ति होते हैं, लेकिन हमेशा वैष्णव शक्ति नहीं दिखाते, शक्ति तो नहीं दिखाते हैं, कभी कभी अलग ही शक्ति है, वैष्णव की शक्ति अलग ही शक्ति थे, लेकिन पूरे वैष्णव कभी शक्ति दिखाते नहीं। समानंद प्रभु, रसिकानंद प्रभु और अभिराम ठाकुर ही लोग दिखाए जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो मतलब इतना पढ़े लिखे नहीं है, इतना हम लोग वो दर्शन को नहीं समझते हैं, उसको कुछ अलग शक्ति दिखाना पड़ता है। तब एक आपके पास शरणागत हो जाएंगे, सरेंडर हो जाएंगे, ऐसे बहुत बताते हैं, इसलिए उसी समय मैंने बहुत सारी शक्ति दिखाई। तो नवीन किशोर तो भक्त हो गया, इसी प्रकार आगे बढ़े गए रसिक पुराणी, तो वो बहुत व्याकुलता हो गए थे बचपन में, उन्हें गुरु प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास था, एक सदगुरु प्राप्ति के लिए ठाकुर जी ने सबने दिखाया कि मेरे गुरु इधर ही आने वाले। तो श्यामानंद प्रभु घाट शिला में भागवत की रक्षा कर रहे थे, इसी समय जाके रसिकानंद प्रभु मिले शिष्य बनाए तो दोनों दीक्षा देने लगे, प्रचार करने लगे। तो उन्होंने गोपीवल्लभपुर में अपने सिंपाट ने मंदिर स्थापना किए। गोपीवल्लभपुर में एक बार समाज को बैठे थे तो उनकी ख्याति बहुत फैल गया था। एक दूसरे पीर ने और सिद्ध भगवान थे जो भी मिल के उनके शेर के पीठ में बैठकर शाम को मिलने आ रहे थे। लच्छा शाम का ताकत है, बस लोगों के कार्य करते थे, इसलिए वो भी शेर के पीठ में बैठ गया। तो खबर मिला शाम प्रभु को ऐसे आ रहे हैं मिलने के लिए, तो एक उद्धव था उनको उनका शिष्य थे, तो बोला
स्वर्ग है।